जी, ये बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग है। तो उसकी दो वजूहात हैं, एक तो पाकिस्तान के अंदर चेंजेस हुई हैं, नवाज शरीफ साहब को रिमूव किया गया है, तो एक नई लीडरशिप आई है। दूसरी बात ये कि जैसा आपने इंट्रोडक्शन में कहा, वो इंटरनेशनल रिलेशंस में चेंजेस बहुत होती हैं। पाकिस्तान की डिफिकल्टीज ये हैं कि पाकिस्तान के इंटरनेशनल रिलेशन का जो फ्रेमवर्क है वो अब मेरी असेसमेंट में बुसीदा हो चुका है, मतरूक हो चुका है, अब्सोल्यूट हो चुका है, और पाकिस्तान के जो रीजनल सिचुएशन है वो बेइंतहा मखदूश है, डिफिकल्ट है, और पाकिस्तान के जो बायलैटरल रिलेशंस हैं उनकी देखभाल प्रॉपर तरीके पे नहीं की गई। तो ये टाइम है कि हम अपने, और पहली दफा मैं सोचता हूँ कि 1971 के बाद पहली दफा हुआ है कि पाकिस्तान को डिप्लोमेटिक आइसोलेशन का सामना है, और ये आइसोलेशन बड़ी एक्सटेंसिव है। तो मेरी नज़र में ये बेस्ट टाइम है कि फॉरेन पॉलिसी के इश्यूज को रिविजिट किया जाए और फॉरेन पॉलिसी फ्रेमवर्क को रिवाइज किया जाए, और एक नई स्पिरिट के साथ, एक नए अंदाजे के मुताबिक अपने हालात को और अपनी पॉलिसी को एडजस्ट किया जाए।
तो आप क्या समझते हैं, जो एग्जिस्टिंग फॉरेन पॉलिसी है ये बुरी तरह एक्सप्लोड क्यों हुई है, इसकी क्या वजूहात आप देखते हैं, कहाँ पे आपको खामियां नजर आती हैं?
ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। वो यूँ है कि जो फॉरेन पॉलिसी को कहते हैं कि इनपुट आउटपुट है, जो आप आज करते हैं उसका असर जरूर निकलेगा, चाहे वो 20 साल के बाद निकलेगा। हमने डिप्लोमेटिक हिस्ट्री में पढ़ा था कि जो यूरोपियन वार थी इनके सीज सदियों बिछाए गए और बाद में ये एक्सप्लोड हुए। यही हमारे साथ हुआ, जब ये पाकिस्तान का 1947 में पार्टीशन ऑफ इंडिया हुआ तो उस वक्त हमें एहसास नहीं हुआ कि एक बहुत बड़ा सब कॉन्टिनेंट है, उसको रिलीजियस बेसिस पे तकसीम किया गया है और उसके हिस्से बखरे किए गए हैं। फिर जब ये हिस्से बखरे किए गए तो जो एक कॉम्पैक्ट ब्लॉक हमें मिला, ईस्ट पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान, तो उसको हमने पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली प्रमोट नहीं किया। हमने सोचा कि चूंकि स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, ईस्ट वेस्ट कॉन्फ्लिक्ट है, तो हम इस सिचुएशन से फायदा उठाएंगे। तो कभी हम अमेरिका को रूस के खिलाफ प्ले करते थे, कभी हम अमेरिका को चीन के खिलाफ प्ले करते थे, कभी हम चीन को रूस के खिलाफ प्ले करते थे। तो हमने एक स्टडी नेशनल फ्रेमवर्क नहीं ठीक किया। फिर हमें एहसास नहीं हुआ कि ये पेट्रो डॉलर आ जाएगा तो उससे रीजनल सिचुएशन बदल जाएगी। और फिर फाइनल पॉइंट मेरा ये है कि जो 21st सेंचुरी आई है ये किसी ने भी एंटिसिपेट नहीं की। हमने बड़ा शोर मचाया है कि जी लिबरलिज्म आ गई, फ्री ट्रेड आ गया, वन वर्ल्ड बन जाएगा, सारी दुनिया मिल जाएगी। ये नहीं पता था कि इसके अंदर जो अंडरलाइन करंट है वो कैसी होगी। तो ये तमाम मसाइल इकट्ठे हो गए और पाकिस्तान एक रेसिपिएंट बन गया उन तमाम मुश्किलात का, जो कि हमारी नहीं है, लोगों की हैं, लेकिन हमने उनको स्पेस दी, हमने हतुल मकदूर कोशिश करने की कोशिश, उनको रोकने की कोशिश नहीं की, और हमने इर्द गिर्द नहीं देखा। और बहुत बड़े रेवोल्यूशन हुए, चैलेंजेस आए, ईरान फॉर एग्जांपल का बहुत बड़ा रेवोल्यूशन था, हमें एहसास नहीं हुआ कि वहाँ पे एक शिया फैक्टर डेवलप हो रहा है। हमने अफगानिस्तान की वार को ठीक से अप्रिशिएट नहीं किया, हमने समझा कि जी वो रशियन को आए हैं उनको निकाल लेंगे तो बर्लिन वॉल टूट जाएगी, बर्लिन वॉल टूट जाएगा तो यूरोप एक बन जाएगा और हम बहुत खुशहाल होंगे। हमें एहसास नहीं हुआ कि हिंदुस्तान अपनी न्यूट्रलिटी की वजह से, अपने पीसफुल स्लोगन की वजह से, अपनी आइसोलेशन की वजह से वो इकोनॉमिकली ज़्यादा प्रोग्रेस कर जाएगा और वो हमारे लिए एक खतरा बन जाएगा। हमारे यहाँ एक और फैक्टर आ गया, वो था इस्टेब्लिशमेंट और पॉलिटिकल क्लासेस में क्लैश, वो कभी कंबाइन नहीं हुए, भुट्टो साहब से लेकर आज तक कभी एक यूनिफाइड स्ट्रक्चर हम लोग डेवलप नहीं कर सके।
ٹھیک, بہت سارے عوامل آپ نے امبیسیڈر صاحب بتائے ہیں, لیکن اب یہ بتائیے گا کہ وے آؤٹ جو ہے وہ کیا ہے, پاکستان ان حالات میں کیسے خود کو سنبھال سکتا ہے, اور یہ بھی بتائیے گا کہ کیونکہ وزیر خارجہ جو ہے پاکستان کے آصف خواجہ صاحب, وہ اس ہفتے روس, چین اور ترکی کا دورہ کر رہے ہیں, ان کا ایجنڈا کیا ہونا چاہیے؟
میرے خیال میں یہ وزٹ تو خیر کرنی چاہیے, لیکن ان کو پہلے امریکہ بھی جانا چاہیے, اس لیے کہ امریکہ کے ساتھ ہمارے بہت اچھے تعلقات ہیں, اور کوئی افرنس نہیں دینا چاہیے ہمیں ویسٹ کو, کیونکہ ویسٹ میں ہمارے ایکسپیکٹڈ پاپولیشن ہے, ہمارے تعلقات ہیں, ڈیفینس اکوپمنٹ ہے, تو یہ چائنا جو ہمارا دوست ہے, رشیا جائیں گے تو آپ کو کچھ نہیں ملے گا. آپ نے پوچھا کہ کیا کرنا چاہیے, میری اسٹیمیشن, میری اسیسمنٹ یہ ہے کہ ہمیں سارا جو فارن پالیسی کا فریم ورک ہے اس کو ریوائز کرنا چاہیے, ہمیں حد المقدور کوشش کرنا چاہیے کہ ایک نیوٹرل, نان الائنڈ یا نیوٹرلائز کنٹری کا رول ہم اڈاپٹ کریں, ہم ایک نیا روپ اختیار کریں, ہمیں اب دنیا کے مسائل یا مسلمانوں کے مسائل یا مڈل ایسٹ کے مسائل, ان میں منیمم رول اور جو پازیٹیو رول ہے وہ پلے کرنا چاہیے, ہم امہ کے ممبر ہیں لیکن ہم ایک کنسٹرکٹیو طریقے پہ اگر کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں تو کریں, ہمیں ان کے ڈسپیوٹ پہ نہیں جانا چاہیے اور ان کے پرابلمس پہ نہیں جانا چاہیے, اور ہمیں اپنے جو نیبرز ہیں وہاں پہ بارڈر مینجمنٹ کر کے اپنے آپ کو مکمل طور پہ انسولیٹ کرنا چاہیے.
رائٹ, اوکے, مشتاق میر صاحب ہمارے ساتھ رہیے. ظفر طاہر صاحب, آپ بتائیے گا آپ کیا سجیسٹ کرنا چاہیں گے پاکستان کو, موجودہ حالات سے وہ کیسے نکل سکتا ہے؟
میں سمجھتا ہوں کہ کچھ ایسے ضرور موقع ہیں جو پاکستان نے مس کیے ہیں, اور پاکستان کو چاہیے کہ اپنی پالیسی کو ریویو کرے, اور پاکستان کو چاہیے کہ جتنے بڑے ممالک ہیں ان کے ساتھ انگیجمنٹ کو میرے خیال سے نئی طریقے سے استعمال کرے, ایک نئی سوچ کی ضرورت ہے. بہت ہی کیپیبل پاکستان کا ڈپلومیٹک اسٹاف ہے, کم از کم جن لوگوں سے میرا واسطہ پڑتا ہے, وہ پروفیشنلی ٹرینڈ, وہ سمجھتے ہیں. اب کہاں تک ان کی بات, جو پولیٹیکل جو لوگ پاور میں ہیں اسلام آباد میں, وہ ان کی بات سنتے ہیں, اس پہ عمل کرتے ہیں. مجھے جو مسئلہ نظر آ رہا ہے وہ پاکستان کے اندر ایک یونیفائیڈ اپروچ نہیں ہے. کسی بھی قوم کی ترقی کے لیے ضروری ہے کہ اس کے جو اہم ستون ہیں وہ ایک طرح سے اور ایک ڈائریکشن میں کام کریں.